والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد صلى الله عليه وسلم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرذين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. صدق الله العلي العظيم. سورة مباركة ياسين، اور ہم نے عرض کیا کہ یاسین سے مراد سرور کائنات محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ہم اس کی تفسیر کو پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آج دو آیات کی انشاءاللہ تفسیر پیش کریں گے، آیت نمبر 69 اور 70، 69 اینڈ 70، دو آیات کی جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے: وما علمناہ الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین لینذر من کان حیا ویحق القول علی الکافرین، کہ اور ہم نے اپنے پیغمبر کو شاعری نہیں سکھائی اور نہ ہی وہ ان کے شایان شان ہے، بس یہ تو ایک نصیحت اور قرآن مبین ہے، تاکہ وہ زندہ افراد کو عذاب الہی سے ڈرائیں اور کافروں پر بات پوری ہو جائے. یہ دو آیات کی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے پہلے لوگوں کو جب توحید بتا دی، معاد وغیرہ سب بتایا، تو اس کے بعد پھر بہت دو آیات سے بہت سخت ڈرایا کہ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، اگر ہم چاہیں تو ہم ان کی آنکھوں کو مٹا دیں اور وہ راستے کو دیکھ بھی نہ پائیں. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو ان کو ان کی جگہ پہ ہی مسخ کر دیں اور وہ وہاں سے نہ آگے بڑھ جا سکتے ہیں اور نہ ہی پیچھے لوٹ سکتے ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان دو آیتوں کے اندر جو ہے وہ تحدید کی ڈرایا کا، ہم نے جیسے گزشتہ امتوں کو مسخ کر دیا، پرانی امتوں میں جب لوگ گناہ کرتے تھے تو ان گناہوں کی وجہ سے وہ مسخ ہو جاتے تھے، جیسے گناہ کرتے تھے مسخ ہو جاتے تھے، لیکن امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے یہ کرم کیا رسول خدا کی امت ہونے کی وجہ سے کہ یہ مسخ نہیں ہوتے، گناہ کرتے ہیں گناہوں کی وجہ سے مسخ نہیں ہوتے، ان کے چہرے نہیں بگڑ جاتے. یعنی پہلے مسخ ہو جاتے تھے کہ کسی جانور میں تبدیل ہو گئے، لیکن امت محمدی مسخ نہیں ہوتی، لیکن بعض اوقات چہرے جو ہیں وہ اہل ایمان دیکھتے ہیں پہچان لیتے ہیں کہ یہ چہرے مسخ شدہ سے یعنی لگتے ہیں، لیکن یعنی جانوروں میں تبدیل انسان نہیں ہوتا. تو اس کے بعد اللہ نے کل ہم نے عرض کیا تھا کہ ایک ہی آیت کی ہم نے صرف تفسیر کو پیش کیا تھا کہ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، جب ہم کسی کو لمبی عمر دیتے ہیں، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، تو ہم اس کو پلٹا دیتے ہیں، بچپن کی طرح پلٹا دیتے ہیں، أَفَلَا يَعْقِلُونَ، تو کیا وہ لوگ اس سے سبق نہیں لیتے. تو رسول اسلام پہ، اچھا یہ ہر دور میں رہا ہے، جب انسان کسی کو دیکھتا ہے کہ ترقی کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، بہت تیزی سے اپنے کام میں کامیاب ہو رہا ہے، تو لوگ اس پہ تہمتیں لگانے لگتے ہیں. تو تہمت لگانا جو ہے وہ اس کو اس کے مشن میں روکنے کے لیے تہمت ہے. بہت سے لوگ تحقیق تو کرتے نہیں، تہمتوں کو مان لیتے. میں بس بعض ہر دور میں ایسے رہتے ہیں. اب یہاں پہ اللہ نے شعر کے لیے مذمت کی، تو بعض اوقات آپ شعرا ایسے تھے جو شعرا کی مذمت کی گئی، یعنی جو باتیں گھڑتے تھے شاعری رسول خدا کے ہجوم میں، سخفر اللہ علیہ وسلم کی توہین میں، ان کے مخالفت میں، جو صنادید عرب تھے، ایک ایک سندی جو ہے وہ اپنے اپنے شعراء کو بلاتا کب کہو خلاف ان کے کلام کہو، تو وہ ان کے خلاف. اس طرح سے آج صحافت، صحافی ہیں بہت سے، صحافی ٹی وی پہ صحافی آتے ہیں، اخباروں میں لکھتے ہیں، تو بہت بہت سی ایسی باتیں کھڑ دیتے ہیں. میں مثال کے طور پہ کہ جی اس لیڈر کی اس لیڈر سے میٹنگ ہوئی اور ان کی میٹنگ کے دوران یہ باتیں ہوئیں، اور وہاں پہ کوئی موجود نہیں تھا. بھائی جب یہ کوئی موجود نہیں تھا تو آپ کیسے ساری رپورٹ لکھ رہے ہیں اندر کی؟ تو یعنی بہت سی ایسی باتیں گھڑ دی جاتی ہیں. تہمتیں لگانا، یہ جو ہے یہ تہمتوں کا بازار ہمیشہ گرم رہا. تو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پہ بے انتہا تہمتیں لگائی گئیں. ابتدائی دور میں لوگوں نے کیا کہا کہ رسول خدا کو کہا کہ یہ ساحر ہیں، جادوگر ہیں، ساحر ہیں، جادوگر، اور یہ قرآن کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ سحر ہے. ये जादू है। तो वो अरब के जो लोग जब जमा हुए तो उन्होंने कहा भी क्या कहें, उन्होंने कहा भी वलीद नाम एक उनका बड़ा था, तो उसने कहा कि भाई ये जो मुशरकीन थे, उसने कहा कि भाई लोगों से कह दो कि ये जादूगर है। तो कुछ लोगों ने पूछा कि भाई लोग अगर हमसे पूछेंगे भाई जादू की दलील क्या है, यानी बेवजह से तो यानी हम कहते हैं जादूगर है तो क्या क्या हमारे पास, कहेंगे ज्यादातर, तो उसने वलीद ने कहा ज्यादातर लोग पूछेंगे ही नहीं, वैसे ही मान लेंगे। अहले ईमान का काम यह है तहकीक करें किसी भी बात को मानने से पहले। तो कहा कि नहीं ज्यादातर लोग तो वैसे ही मान लेंगे, उन्हें तहकीक की जरूरत नहीं, जो मर्जी हम प्रोपेगेंडा करेंगे, जो मर्जी हम उनके खिलाफ तोहमतें लगाएंगे, लोग उसको मान लेंगे। और बिलफर्ज कुछ लोगों ने हमसे पूछा कि बहुत लोग पूछने वाले होते हैं, तहकीक करते हैं, तो बिलफर्ज जो लोग पूछेंगे तो उन्हें कह देना कि भाई जादू से लोग एक दूसरे में जुदाई डाल देते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ने भी हमारे खानदान में जुदाई डाल दी है, बेटे को बेईमान बना दिया, बाप से दूर हो गया, बाप बेईमान हो गया, बेटा उसको छोड़ गया, तो बीवी मान ले आई उसने शौहर को छोड़ दिया, शौहर ही मान ले आया उसने बीवी बच्चों को छोड़ दिया, तो ये जुदाई डाल रहे हैं लोगों में, तो ये तफरकाबाजी है, ये इसलिए इसकी ये जादूगर है, साहिर है। तो उन्होंने पूरे के पूरा के प्रोपेगेंडा किया, तो चार तोहमत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लगाए गए। पहला कहा कि भाई ये जादूगर है, और काहिन भी कहा, लेकिन उसके बाद फिर वो कहने लगे भाई ये शायर है। अब जब ये पुरानी हो गई तोहमत तक चली नहीं रही, यानी कुछ अर्से चली, प्रोपेगेंडा किया कि भाई ये साहिर है, जादूगर है, कुछ अर्से साल दो साल निकल गए, जब पुरानी हो गई तो अब उनको नया को प्रोपेगेंडा करना पड़ा कि भाई लोग फिर भी नहीं मान रहे थे इतने, हम शुरू शुरू में तो लोगों पर असर हुआ, प्रोपेगेंडा का असर होता है। मुआविया ने जनाब अमीर के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, सब जगह मशहूर कर दिया, अली बेनमाजी है, नमाज नहीं पढ़ते, लोग मानने लगे। बहरहाल वो प्रोपेगेंडा जब पुराना हो जाता है कई मरतबा उसकी तोड़ भी आ जाता है। तो अब इन्होंने पहले कहा कि भाई ये साहिर है, जादूगर है, कुछ अर्सा चला, उसके बाद फिर नए नए एक से एक रसूल खुदा सूरे आते रहे, आयात सुनाते रहे, तो उन्होंने कहा भाई ये तो पुराना हो गया, कुछ और करना पड़ेगा। तो उन्होंने उसके बाद कहा ये शायर है, ये कलाम, ये कुरान जो है ये शेर कह रहे हैं। तो अल्लाह ने उस बात की ये सूरह यासीन में नफी की, कहा कि वमा अल्लमनाहु शेर वमा यंबगीला, और हमने अपने पैगंबर को शायरी नहीं सिखाई, वमा यंबगीला, और सदावार भी नहीं है, और ये उनके शायान शान भी नहीं है कि उनको वो शायरी करें। इन हुआ अल्लाह ज़िक्र कुरान मुबीन, बस ये तो एक नसीहत और कुरान मुबीन है, ये जो कलाम है ना ये शायरी है ना ही ये गजाफ गोई है, यानी ये बेतों की बातें नहीं है, बल्कि ये जिक्र है, नसीहत है, और कुरान मुबीन है। मुबीन से मुराद यानी खुला हुआ, आशकार कुरान है, अल्लाह की भेजा हुआ कलाम है। तो अब यहां अल्लाह ने जो है शायरी की नफी की है, तो अब यहां पे बहुत से लोगों ने मुख्तलिफ चीजें जो है वो पेश की हैं कि वमा यंबगीला, यानी कुछ ने मैं यानी ये सब तफसीरें पे राय हैं, ये सारी बातें जो बहुत सी मैं पेश कर रहा हूँ, यानी कि लोग जो है उन्होंने मुख्तलिफ बातें बना दी और कहा कि भाई नहीं, वमा अल्लमनाहु शेर, हमने रसूल खुदा को शायरी नहीं सिखाई। बाद में लिखा कि नहीं, रसूल खुदा के शेर याद नहीं होते थे, और उनके बाद सहाबा ने कहा कि जी वो शुरा के कलाम को गलत कोट करते थे, क्योंकि अल्लाह ने कहा कि हमने उनको शेर नहीं सिखा, माज़ल्ला सफ़र तला गलत कोट करते थे, यानी गलती करना जो मासूम है, गलती सहवो नसीहान कैसे मुमकिन है कि गलत ये शेर उसका है उनको याद नहीं है, ये नहीं है मुराद यहाँ पे। या बाज़ ने कहा कि नहीं, शुरा जो हैं वो बातें घड़ते हैं सिर्फ अपने पास से, बेतों की बातें करते हैं, इसलिए अल्लाह ने उनको शायरी नहीं सिखाई। तो ये जो इतने बड़े बड़े अहम मुसलमान के पूरे दीवाने अमीरुल मोमिनीन मेरे पास मौजूद है, दीवाने हजरत अबू तालिब, रसूल खुदा ने जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के उन अशआर की तारीफ की है, जनाब अमीर ने पूरी जिंदगी कलाम का पूरा दीवान है अमीरुल मोमिनीन है, हर इमाम अलैहिस्सलाम के जो है अशआर हैं, हजरत जहरा सलाम अलैहा के मरसी हैं, अशआर हैं, जनाब ज़ैनब कुबरा सलाम अलैहा के हैं, और रजस खानी जनाब अमीर अलैहिस्सलाम जब जंग में जाते थे रजस पढ़ते थे, तमाम अहाब सहाबा रजस पढ़ते थे, सैयदुल शहदा और तमाम शहदा करबला ने रजस पढ़े हैं, जो जाते थे मैदान के अंदर रजस पढ़, जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम, जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम, तो ये रजस खानी। ये बातें ऐसी ना करें कि जो तफसीरें बिराए ना करें, कुरान नफी करने में कुरान जब आए समझ में नहीं आ रही किसी ऐसे के लिए छोड़ दे जिसको समझ में आ गई, तो तफसीर बुजुर्ग उलमा ने जो उसकी पेश की है मैं इंशाल्लाह पेश करूंगा अभी आपके सामने। तो बहुत से लोगों ने उसकी नफी करने के लिए बहुत कुछ जो है ना शायरी के खिलाफ मजम्मत में कुरान की आयात भी पेश कर दी, मैं भी वो आयात भी पेश करता हूँ, सूरह शुआरा सूरह नंबर 26 है। तो बहरहाल क्या है इनकी तफसीर, तो ये जो आइम के कलाम है शायरी की मजम्मत में भी आयात भी हैं और हदीस भी हैं, और उसकी तारीफ में भी आयात और हदीस हैं। तो क्या है यानी इसको समझने की ज़रूरत है कि ये सूरह शुअरा की आयात को मैं पेश कर दूं पहले। तो अल्लाह सुबहानहु ताला इरशाद फरमा रहा है कि सूरह शुअरा 26वां सूरह, इसकी आयत नंबर 224 के बाद, वह शुअरा ओ यतबिउहुमुल गावून, और शुअरा ना सूरह का नाम शुअरा इस आयत की वजह से, शुअरा वो हैं के बहके हुए लोग जिनके पीछे चला करते हैं। यतबिउनल गावून, यतबिउहुमुल गावून, जो लोग बहके हुए हैं वो उनकी इत्तबा करते हैं, वो उनका इत्तबा करते हैं, उनके पीछे चलते हैं। अलम तरा अन्नहुम फी कुल्ले वादिन यहीमून, क्या तुमने देखा नहीं कि वो हर वादी में भटकते फिरते हैं? वह अन्नहुम यकुलून माला यफालून, और वो ऐसी बातें कहते हैं जिन पर वो खुद अमल नहीं करते। तो ये शोहरा की मजम्मत में, लेकिन इसी से अगली आयत तो पढ़ें, इल्लल्लज़ीन आमनू व आमिलुस सालिहात, सिवाय उनके के जो ईमान लाए और नेकियों का काम अंजाम देते हैं। वज़करुल्लाह कसीरा, और अल्लाह का बहुत कसरत से जिक्र करते हैं। वंतसरु मिन बादे मा ज़लमू, और जब उन पर जुल्म हो तो हुआ तो इसके बाद उन्होंने इसका बदला लिया। वसयालमुल्लज़ीन ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून, और जालिमों को जल्द ही पता चल जाएगा कि किस अंजाम से इनका सबका होगा। तो भाई यहाँ पे जो शुअरा की मजम्मत है, वो जो कुफ्रिया जुमले कहते हैं, कुफ्रिया शेर कहते हैं, या जो अपने हवाए नफ्स के मुसज्जा मुकफ़ा अल्फाज, मुसज्जा और मुकफ़ा अल्फाज, बस उन्होंने पिरोए अल्फाज, पिरोए खास वजन के अंदर, और जिसके अंदर तौहीन के पहलू या दुनिया की गजाफ गुफ्तगू और बेबुनियाद बातें, उनकी मजम्मत है ना। वो कि जो ईमान रखते हैं, जो हम्द बजा लाएं, जो नात कहें, जो कसीदा कहें, जो मनकबत कहें, उनकी शुरा की मजम्मत नहीं है। इल्लल्लज़ीन आमनू, अल्लाह ने कह दिया, सिवा उनके जो ईमान लाए, अमल सारे बजा लाए और अल्लाह का जिक्र करते हैं, और जो उन पर जुल्म हुआ उसके खिलाफ। हत्ता खुद रिवायात में है कि हसान इब्न साबित को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में अपनी मस्जिद नबवी में कहते थे कि तुम मुशरिकीन के खिलाफ जो शेर कहें वो सुनाओ, और वो सुनाते थे। और गदीर खुम में जो इतने शुरा ने कलाम कहा, खुद वहां गदीर खुम के वाके वाले दिन खुद हसान इब्न साबित ने, और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनसे कहा कि भाई हसान, हसान इब्न साबित यानी उनको दुआ दी, वो भी मशरूत, लेकिन कहा कि अल्लाह तुम्हें इसी तरह से जो अल्फाज है, अगर एग्जैक्ट नहीं, क्योंकि रोजे की हालत में मैं ये अमादी हूँ, मजमे का बगैर मजमे के मैं मुसलसल आपके सामने ये दर्स देता रहा, कोशिश करता रहा। ये माह रमज़ान का आखिरी हफ्ता है अब, और रोजे की हालत में आसान नहीं होता है, बरतानी में खुद 18-18 घंटे के रोजे, और ये बिल्कुल अख्ताम में रोजा के वक्त जो है, इख्तिताम से पहले यानी रोजे के इख्तिताम से पहले इंसान पूरा दिन जो है वो रोजे से होता है। तो मैं देख के पढ़ने का आदी नहीं, लेकिन मैं कोशिश करता रहा आयात को रिवायात को, क्योंकि रोजे की हालत में आयत रिवायत को आगे पीछे करने से रोजा जो है वो बातिल हो जाता है, इसलिए मैं देख के पढ़ता रहा, मैं आदी नहीं हूँ उस तरह से। तो आयत और रिवायत को बहुत दिक्कत से कोशिश करता रहा कि पढ़ूँ और देखूँ। तो अभी भी एक रिवायत मेरे जहन में आ रही है, आप लोगों ने फिर भी, आपका हुस्न समात रहा, आप लोगों ने बहुत शौक से सुना, अच्छी तारीफ की, बहुत शुक्रिया। तो अब यहाँ पे रिवायत के अल्फाज हैं कि रसूल खुदा ने उनको मशरूत दुआ दी, कभी इंशाअल्लाह यानी तुम सही रास्ते पर रहो, सिवाय इसके कि तुम अगर हमसे हट जाओ, यानी एक मुतलक दुआ नहीं दी रसूल खुदा ने, शर्त रखी कि हाँ अगर तुम राह रास्त पे रहो, क्योंकि बाद में हिसार इब्न साबित जो हैं वो फिर अब आखिर उम्र में क्या हुआ कि मुआविया के पास चले गए, और मुआविया ने पैसे दिए, कहा कि भाई तुम अली के खिलाफ शेर कहो, उन्होंने हजरत अली के खिलाफ में कहा कि नहीं, कहा नहीं, वो जो गदीर खुम लेकर रहते पहले, फिर बाद में पैसे ना होने की वजह से, दुनिया इंसान के लिए बात का तो पैसा बड़ा अजीब गरीब शय है, तो इंसान दुनिया की खातिर आखिरत तबाह कर देता है। तो मुआविया ने कहा मेरी शान में कहो, उन्होंने मुआविया की शान में भी हिसार इब्न साबित ने शेर कह दिया, बेकार नहीं अली के खिलाफ कहो, लिखो शेर, तो भी बेचारे लिखे उन्होंने। तो बाज़कात ऐसा होता है कि बहुत से लोग यानी ये शेर जो है वो मदह में हो, हम्द में हो, नात हो, तो उसकी मजम्मत नहीं है। तो यहां पे, अब यहां पे अल्लाह के रसूल ये नहीं कह रहा कि रसूल खुदा सलाह नहीं, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक मिलता है कि आपने सिर्फ पूरी जिंदगी में एक शेर कहा, वो भी शेर कहा नहीं, हो गया। जब जंग हुनैन में, गजवा हुनैन में सहाबा रात के वक्त घाटी थी, दोनों तरफ पहाड़ियां थी, तो हमला कर दिया, लोगों ने छुप के और मंसूबा बनाया कत्ल का रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और बिजली कड़की और बहुतों के चेहरे नजर आ गए और बहुतों को नाम बता दिया रसूल खुदा ने कौन कौन हमला करने वालों में था। तो बड़े जलीलुल कदर असहाब थे कि जिनके मुताबिक लोग कहते थे कि भी, वो कहते थे मेरा नाम तो नहीं है तुम्हें बताया, या उस रात तुमने मेरा चेहरा तो नहीं देखा था, जिन लोगों ने हमले किए छुप छुप के, और साहबा भागे थे। तो चंद छः सात अफराद रह गए, जनाबे बुजर थे, जनाबे अम्मार थे। तो दो पहली जंग जहाँ पर रसूल खुदा ने, यानी या जिसमें मुकाबला किया और हमला किया और जंग की, क्योंकि रसूल खुदा जनाब अमीर से मंसूब है कि आप फरमाते थे कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि क्यों तलवार नहीं उठाते थे, क्यों नहीं लड़ते थे, सिर्फ हुनैन में लड़े, वो भी मजबूरन, क्योंकि जान बचाना इस्लाम में वाजिब है। तो रसूल खुदा ने हमला किया, घाटी के दो सिरे, एक सिरे को जनाब अमीर ने संभाला, एक सिरे को जनाब रसूल खुदा ने खुद, क्योंकि चंद अफराद रह गए थे, चंद सहाबा रसूल खुदा की ऊँटनी के पीछे या घोड़े के ऊँटनी के पीछे चल रहे थे, और रसूल खुदा खुद हमला करते थे, बढ़ बढ़ के हमले कर रहे थे, तो लोग भागने लगे, सबको भगा दिया मारा। तो कहा कि क्यों रसूल खुदा हमला नहीं करते थे, नहीं लड़ते थे? कहा कि कुरान ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमत लिल आलमीन, आपको हमने आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा है, रहमत का तकाजा यह है कि तलवार ना चले। और तो फिर कहा कि यानी मिसाल के तौर पर आपसे सवाल किया, तो मैं मफहूम पेश कर रहा हूं कि यानी कि फिर आप फिर क्यों जंग करते थे? तो कहा वो रहमत इलाही थे, मैं जलाल इलाही हूं, तो मैं मुकाबला करते थे, हमला करते थे। तो जनाबे तो हुनैन में आपने मुकाबला किया, तो यानी वहां पे आपने शेर, वो कहते हैं कि शेर कहा, शेर नहीं कहा, वो बन गया, यानी एक शेर जिंदगी में पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक मंसूब है। ला कहते अनन नबी अन अब्नु अब्दुल मुत्तलिब, यानी मैं झूठा नहीं हूं बल्कि नबी हूं और मैं अब्दुल मुत्तलिब का पोता हूं, यानी बेटा हूं, इस तरह से अपने आप को। तो वहां पे कहते हैं रजस पढ़ना, जो है शायरी रजस पढ़ते हैं, तो वो आपने रजस पढ़ा और उसमें शेर कहा, यानी तो बहरहाल पूरी जिंदगी आपने वमा अल्लमनाहु शेर वमा यंबगीला, हमने उनको शायरी नहीं सिखाई, यानी हमने सिखाया क्या, यानी यहां पे मनफी नहीं हो रही कि उनकी सलाहियत नहीं है, ताकत नहीं है, नहीं, यानी हमने जो सिखाया वमा अल्लमनाहु शेर, हमने कुरान सिखाया है, हमने कुरान सिखाया, शायरी नहीं भेजी है हमने, ये कुरान शेर नहीं है। वो जो कह रहे थे कि ये शायर है, कुरान शायरी नहीं, वमा अल्लमनाहु शेर, हमने उनको सिखाया ही कुरान है, वमा यंबगीला, और उनके शायान शान नहीं है कि वो शायरी सुनाते। इन हुआ अल्लाह ज़िक्रुम कुरान, या अगली आयत के अंदर खुद ही जवाब, उसी आयत के अंदर जवाब है, इन हुआ अल्लाह ज़िक्रुम कुरान मुबीन, उसी आयत में अल्लाह जवाब दे रहा है, और ये शेर नहीं है, इन हुआ अल्लाह ज़िक्रुम कुरान, बल्कि ये तो नसीहत है और कुरान वाज़ह तौर पर कुरान है। हर जबान में दो चीज़ें होती हैं, नज्म और नसर, शायरी को कहते हैं नज्म, नज्म और नसर, नून से रे, अरबी में नज्म और नसर कहते हैं। शायरी भी अरबी का लफ्ज़ है शेर, शायर शेर कहने वाला, तो शेर शेर नज्म और नसर, अरबी जबान में तीन चीजें, नज्म है, नसर है और कुरान है, कुरान ना नज्म है ना नसर है, दोनों से बालातर है। तो अल्लाह कह रहा है कि हमने उनको शायरी नहीं सिखाई है, हमने कुरान भेजा है, जिक्र है जो नसीहत है, कुरान मुबीन वाज़ह तौर पर कुरान है, और उनके शायान शान नहीं कि वो शायरी करें, ये शायरी सुनाए। तो रसूल खुदा इसलिए शेर नहीं कहते थे ताकि लोग ये ना कहें शायर है, इन्होंने कुरान भी शेर की तरह से बना के पेश कर दिया, नहीं नहीं ये नहीं, कुरान अगर आप पढ़ेंगे तो ये ना शेर है ना ही है नसर, बल्कि खास तरीके से अल्लाह ने इसको नाजिल किया है, ये मौजज़ा है, जिंदा मौजज़ा। तो यहाँ पे रसूल इस्लाम से नफी है। तो उस जमाने में शुरा जो हैं वो उनकी मजम्मत की गई है जो कि ईमान नहीं रखते थे और गैर संजीदा थे और लगव गोई करते थे। कुरान की एक आयत आप ऐसी नहीं दिखा सकते जिसके अंदर माना ना हो, जिसके अंदर कोई बहुत से अल्फाज, वो शुरा उसका कोई माना नहीं होता था, बल्कि कहते थे जितना झूठा होगा उतना अच्छा शेर, अहसनो कुरान में एक आयत नहीं दिखा सकते माजल्ला जो झूठ पे मबनी हो, या एक आयत नहीं दिखा सकते जो मुबालगा आरई हो या दिखावा हो या जिसका मफहूम ना हो। सिर्फ अल्लाह ने जब अच्छे अल्फाज को जोड़ तोड़ के रख दिया और उसके अंदर मफहूम कुछ ना, कोई आयत ऐसी नहीं जिसके अंदर कोई मतलब ना हो, हर हर आयत गहराई रखती है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा गहराई है और उसके अंदर मफहूम बहुत अच्छा है और उसका मानी मयान मानी बयान बदी सब कुछ उसके अंदर बहुत दकीक है, बहुत ही दिक्कत से रखा गया। तो अब ये अल्लाह सुब्हान तआला ने कुरान नाजिल किया और क्यों, लियुंज़िरा मन काना हय्यम यहक्कल कौलु अलल काफिरीन, लियुंज़िरा ताकि मेरे हबीब जो है वो डराए लोगों को, लियुंज़िरा मन काना हय्यन ताकि वो जिंदा अफराद को अज़ाब इलाही से डराए, हय्यन وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور کافروں پر بات پوری ہو جائے، حق ثابت ہو جائے، بات پوری ہو جائے یعنی حق ثابت ہو جائے، يَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، کافروں پہ حق بات ظاہر ہو جائے. اب یہاں پہ کیا لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، جو بھی زندہ ہے انہیں ڈرا، یعنی کیا مطلب زندہ، مردوں کو کب ڈرایا جاتا ہے؟ بہت گہرائی ہے اس آیت کے اندر، بہت گہرائی ہے، غور سے سنیں. لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، جو زندہ ہو. یہ کون سی حیات، یہ حیات نباتی حیات حیوانی کی بات نہیں ہو رہی، چلتے پھرتے انسان، نہ کچھ لوگ زندہ ہیں، سانس لے رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، دل مردہ ہیں ان کے. تو یہ قرآن جو ہے کس کے لیے ڈراتا ہے، کس کو، کون ڈرتا ہے قرآن سے؟ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، جس کا دل زندہ ہو، دل مردہ نہ ہو گیا. تو بہت سے لوگوں کے دل مردہ ہیں، اہل بیت کا تذکرہ سنتے ہیں لیکن پھر بھی ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. بہت سے واقعات ہیں، میں ایک واقعی طرف اشارہ کروں گا. تو اب یہاں پہ شاعری کے متعلق ہے، سید مرتضیٰ جن کو نقیب سادات بھی کہا جاتا تھا، سادات کے سید السادات یعنی نقیب سادات کہلاتے تھے، اور ان کا حق تھا، واقعا بہت پاک دامن تھے. تو جب جناب امیر علیہ السلام کا حرم کی تعمیر کا وقت آیا تو شعراء مختلف آنے لگے اور آ کے جناب امیر علیہ السلام کی شان میں قصیدے منقبت کہنے لگے، اور کہا کہ بھی ہم جو ہے وہ سنائیں گے، اشعار سنائیں گے. تو ایک بہت بڑے شاعر تھے حسین ابن حجاج کے نام سے، تو وہ آئے، انہوں نے جو ہے وہ اشعار پڑھنا شروع کیے، بہت پیارے قصیدے پڑھے، حرم کی تسبیح اور حرم کے جو ہے نا وہ حرم کی شان بیان کرنے لگے، مولا کے حرم کے بنانے کی باتیں کرنے لگے. تو جب وہ کہہ رہے تھے تو اس وقت کیا ہوا کہ انہوں نے کچھ جناب امیر کی شان میں کہے قصیدے، اور وہ کچھ انہوں نے آپ کے دشمنوں کی مذمت میں اشعار کہے، یعنی اس میں تبرک کے پہلو تھے. تو جب تبرک کے پہلو آیا تو وہ سید مرتضیٰ، وہ تقیہ کا دور تھا، تقیہ میں تھے، تو انہوں نے فوراً جو ہے وہ کہا بس آپ بس کریں، انہوں نے روک دیا حسین ابن حجاج کو، انہیں روکا تو ان کی دل آزاری ہوئی، وہ بہت زیادہ افسردہ ہو گئے، مجھے سب مجمعے کے سامنے روک دیا انہوں نے، روکا تو وہ بیچارے اترے اور رکے بھی نہیں، اور فوراً سیدھے گھر چلے گئے اور آنکھوں میں آنسو لیے، ان کا دل ٹوٹ گیا ان کے بھی، مجھے سید مرتضیٰ جیسی اتنی بڑی ہستی نے روک دیا، مجھے میری مذمت کی. تو بہرحال اب وہ چلے گئے گھر. جب وہ چلے گئے تو ان کا دل ٹوٹ گیا تھا، انہوں نے خواب میں جناب امیر علیہ السلام کو دیکھا. ہاں، کتاب کا میں نام حوالہ دینا چاہ رہا تھا. تو یہ جو ہے وقائع الایام، خیابانی کی کتاب ہے وقائع الایام، وہاں سے نقل کیا ہے شہید صغیب نے قلب قرآن میں، میں وہاں سے پیش کر رہا ہوں. تو کہا کہ بھئی وہ 300 ہجری کے آس پاس جو ہے مسعود ابن آل بویا، بہت پیسہ آیا، عزت دولہ کوئی خزانہ ملا تھا عزت دولہ کو، اس نے کہا کہ میں حرم بناؤں گا. تو بہرحال یہ قصیر مجلس رکھی، تو وہ ناراض ہو گئے اور چلے گئے گھر، چلے گئے. سوئے جب خواب میں تو جناب امیر علیہ السلام کو دیکھا، کہا کہ بھی ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود اپنے بیٹے نے سید مرزا کیونکہ سید تھے تو کہا میں ان کو کہوں گا کہ وہ تمہیں آ کے راضی کریں گے اور آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیے گا، وہ آئیں گے آپ کو منائیں گے. تو بہرحال سید مرتضیٰ نے بھی خواب میں جناب امیر علیہ السلام کی زیارت کی، بہت جلیل القدر تھے اور ان کو واقعا حق تھا نقیب السادات کہلانے کا، بہت بزرگوار تھے. تو خواب میں جناب امیر کو دیکھا کہ جناب امیر ان سے ناراض ہیں، تو کہا مولا میں آپ کا چاہنے والا عاشق بھی ہوں، نسل میں ہوں، آپ کا بیٹا ہوں، آپ ناراض کیوں مجھ سے ہیں؟ تو کہا وہ شاعر جس نے ہمارے شان میں شعر کہا تھا آپ نے اسے ناراض کر دیا، اس کو راضی کریں، اس کو راضی کر کے لائیں. تو اگلے دن ہی فوراً سید مرتضیٰ نے کوئی تکبر نہیں دکھایا، فوراً اٹھے کا مولا کو راضی کرنا، گئے حسین ابن حجاج کے گھر پہ اور کہا کہ بھائی آپ کو، آپ ناراض ہو گئے، میں آپ کو راضی کرنے آیا، میں نے ساتھ خواب میں دیکھا ہے. تو کہا بھی جس نے، حسین ابن حجاج نے کہا جس امام علیہ السلام نے آپ کو بھیجا ہے انہوں نے مجھے حکم دیا کہ اپنی جگہ سے اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، سید مرتضیٰ خود آ کے راضی کریں گے. کہا ٹھیک ہے، مولا کا حکم سر آنکھوں پہ، فوراً دروازہ کھلا، اندر آئے ان کے گھر پہ، انہیں گلے لگایا، پیار کیا، کہا آئیں آپ دوبارہ آ کے پڑھیں. और फिर इज्जत दौला से कहा कि भाई इनको मौला ने मुझे ख्वाब मिसा से इनके लिए बशारत दी है, आप इनके लिए एक वजीफा लगा दें, इनको पैसे भी दें और इनको मुसलसल पैसे दिया करें। तो बहरहाल तो शुरा की मजम्मत नहीं है ये ला, लेकिन ये कि वो कोई उल्टे सीधे शेर ना कहें, अहले बैत अलैहिस्सलाम की शान बयान करें और उसके अंदर भी यानी एहतियात से, यानी कि कोई भी फितना फसाद ना हो। और तो बहरहाल अहले बैत अलैहिस्सलाम के, तो अब यहाँ पे ये जो मैं सुना रहा था आपको कि दिल मुर्दा ना हो, कई लोगों के दिल मुर्दा, तो आइए ज़रा मैं पेश करना चाहता हूँ कि ये दिल कैसे मुर्दा होते हैं। इंसान से मुतालिक अल्लाह ने कुरान करीम में कुछ आयात पेश की हैं, मैं वो पेश करूँ आपके सामने। सूरह मआरिज है, सूरह मआरिज में कुरान करीम में अल्लाह सुब्हान तआला फरमाता है, फअम्मा मन ऊचे किताब हो बियमीने, ये सूरह हाक्का है, सूरह मआरिज, हाँ बाद वाला सूरह है, हाका के बाद सूरह मआरिज, ये जिसके अंदर उसाला सालम बेआदाबिन वाक़, जिसके अंदर एक लिल काफरीन लैसा लहू दाफे, जो एक जनाबे नुमान बिन फहरी के जो वो है जिसने अजाब मांगा था अल्लाह से, अल्लाह ने उसके लिए अजाब भेजा, तो यहाँ पे जिक्र जी। तो अब ये इंसान जिनके दिल मुर्दा है, अल्लाह सुबहान तआला फरमा रहा है कि इन्नल इंसान खुलका हलुआ, बेशक इंसान जो है वो बेसब्र खल्क हुआ, इंसान बेसब्र, इदा मस्सहु शर्रु जजुआ, वहां हलुआ का फिर यहां जजुआ, जब इस पर मुसीबत आ जाती है तो जजा फजा करता है, यानी रोने पीटने लगता है, शिकवे शिकायत, वैदा मस्सहुल खैरु मनुआ, और जब इसे खुशहाली नसीब होती है तो वो बकील बन जाता है, दूसरों को मना कर देता है। तो अब यहां पे इंसान के अल्लाह ने मजम्मत की, इल्लल मुसल्लीन, सिवाय उनके के जो नमाज पढ़ने वाले हैं, अल्लदीन हुम अला सलातहिम दाएमून, जो हमेशा पाबंदी के साथ नमाज पढ़ते हैं, वल्लदीन फी अमवालहिम हक्कुम मालूम, फी अमवालहिम हक्कुम मालूम लिस्साइल वल महरूम, वो लोग जिनके अमवाल पर एक मुकर्रर हक है साइल और महरूम का, हक्कुम मालूम लिस्साइल वल महरूम। तो इंसान जो है वल्लदीना युसद्दिकून बियौमिद्दीन, और जो लोग रोज़े जज़ा की तस्दीक करते हैं, तो दिल मुर्दा हैं लोगों के सिवाय उनके कि जो नमाज कायम करें, राह खुदा में साइलों को देते रहें। तो जो अफराज हैं वो अल्लाह सुबहान व तआला के पैगाम से दूर हो जाते हैं, उनके दिल मुर्दा हो जाते हैं। कई मरतबा अल्लाह सुबहान तआला कहता है उलाइका कल अनआम, ऐसे लोग जो हैं वो मवेशियों की तरह से, बल हम अजल, अल्लाह पे कहते हैं नहीं, मवेशी भी जो हैं वो अल्लाह के हुक्म के नाफरमानी नहीं करते, ये तो उनसे भी बदतर है। तो अल्लाह सुबहान तआला ने बहुत सी चीज़ों की तरफ इशारे किए हैं, और दूसरे मकाम पे अल्लाह कहता है कि ये लोग चलती फिरती लाशें हैं, मैयत हैं, ये चलते हैं फिरते हैं देखते हैं सुनते हैं समझते हैं, लेकिन इन पे असर नहीं होता। जनाब अमीर हसन नशवरा में कहते हैं उलाइका मय्यतुल अहया, ये जिंदों के अंदर मुर्दा है, यानी जिंदा चलता फिरता है, देखने में जिंदा है लेकिन दिल मुर्दा हो चुके हैं। तो यहां ले युंदर मन काना हय्यम यहक्कल कौलु अलल काफिरीन, यानी ताकि वो जिंदा अफराद को अजाब इलाही से डराए, डराए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी जिंदा अफराद से जिनके दिल जिंदा है, असर उसी पे होता है जिसका दिल जिंदा हो, ईमान से दिल जिंदा होते हैं, कुफ्र निफाक से गुनाह से दिल मुर्दा हो जाते हैं। बात कर एक मोमिन होता है, ईमान है लेकिन इतने गुनाह कर लेता है कि उसका दिल मुर्दा हो जाता है। दिलों को मुर्दा ना होने दें, बातों का असर कि इंसान कहीं पे भी हो उसके अंदर मेहमान नवाजी हो, खातिर तवाज़ो हो, मुसलमानों की अलामत ही है कि इंसान के अंदर जो दूसरों का दर्द पाया जाता हो, तो दिलों को डराना, खौफ दिलाना, यानी गुनाहों से बचाने के लिए डराया जाता है, वह अल्लाह को नेकी करेगा तो उसको बशारत दी जाती है। तो रोज़ क़यामत जो है 1 लाख तनाबें लगी होंगी जहन्नम पे, जब उसको लाया जाएगा जी अयोम पे जहन्नम, उस दिन जहन्नम को लाया जाएगा 1 लाख, इमाम सादिक फरमाते हैं 1 लाख तनाबें होंगी उस पर, रोब्स होंगी, एक लाख तनाबें और हर तनाब को 1,000 फरिश्तों ने पकड़ा होगा। अब आप सोचें, जहन्नम को लाया जाएगा और लोग झुक जाएंगे, डर के गिर जाएंगे जमीन पे, परवरदिगार जहन्नम से बचा। जब जहन्नम के सामना होगा इंसान का, तो इंसान जब जहन्नम को देखेगा तो इंसान को इस जहन्नम से इसलिए डराता है, लियुंदिरा मन काना हय्यं यहक्कुल कौल अल काफिरीन। दुनिया में डराया जाता ताकि उस जहन्नम के इंसान अंदर न चला जाए, वहां जाके डरोगे, यहीं पे डरो, गुनाहों से डरो। अभी इमाम मासूम साहब से कहा कि एक इंसान गुनाह करता, उसके बाद तौबा कर लेता है, फिर तौबा तोड़ देता है, फिर गुनाह कर लेता है, तो क्या उसकी तौबा खत्म हो गई? मौलाना का उसके बाद फिर दोबारा तौबा कर ले का, फिर वो गुनाह तौबा कर लेता है फिर दोबारा का, कोई मसला नहीं, फिर दोबारा तौबा कर ले करने, लेकिन कई मरतबा वो तौबा तोड़ चुका फिर गुनाह कर लेता है। मौलाना का कोई मरतबा नहीं, हर दफा जब इंसान गुनाह कर ले तो फिर सिदके दिल से तौबा करे, चाहे 100 दफा गुनाह कर ले लेकिन हर दफा सदके दिल से तौबा करे, बार बार तौबा करे, गुनाह कर भी ले तो तौबा करे, दिलों को मुर्दा ना होने दे, तौबा करते नहीं। कई अफराद ऐसे हो जाते हैं कि जो गुनाहों से फिर डरते नहीं है अपने, वो फिर गुनाह को खुल्लम खुल्ला करने लगते हैं, उनके अंदर गुनाह का खौफ खत्म हो जाता है, वो अपने गुनाहों को लोगों को बताने लगते हैं। और मौलनन बिलफिस्क, इमाम हुसैन सलाम ने जो यजीद से मुतालिब भी कहा, वो कहा मौलनन बिलफिस्क, जो खुल्लम खुल्ला फिस्को फजूर करे, मौलनन अलनन अलनन फिस्को फजूर करे, यानी कि इंसान उसके अंदर हया खौफ खुदा खत्म हो जाए अपने गुनाहों से, वो डरे भी नहीं, वो आदमी वो उसके दिली दरवाजे बंद होने लगते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ने पिछली आयत में डराया था कि अल्लाह फरमाता है कि वला नशा अल्लाह तमसना अला आयुन फसबक सरात फन्ना यबसरून, हम चाहें तो उनकी आंखों को मिटा दें, हम उनकी आंखों को मिटा दें, यानी इंसान नाबीना हो जाए, आंखें खुश्क हो जाएं, आंखें खत्म हो जाएं, आंखें निकल जाएं या नाबीना हो जाए। वला नशा अल मसखनाहुम अला मकानतिहिम फमस्तताउ मुदय्यिन वला यरजिउन, और हम चाहें तो उनको उनकी जगह पे मस्ख कर दें। तो अल्लाह जो है डरा रहा है कि किनको डराया जाएगा, जिनके दिल जिंदा हैं, जो मनकाना हयन लेकिन मनकाना हयन, कि उनको डराएं रसूल खुदा किन्हें, कि जो जिंदा हैं, जो अफराद अभी जिंदा हैं उनको अजाब हाजिर है। वही हक्कल कौल अल काफिरीन, और काफिरों पर जो है वो हक साबित हो जाए, काफिरों पे हक साबित, काफिरों पे हक, हाँ काफिर का भी अगर दिल मुर्दा पूरी तरह से नहीं होगा तो वो हक को देखेगा, उसे मान लेगा। तो मैं इंशाल्लाह कल 3 आयत की तफसीर पेश करने की कोशिश करूंगा, और ज्यादा से ज्यादा आप ये, क्योंकि लास्ट वीक है, हमने 70 आयत तक आज मुकम्मल कर ली है, 83 आयत हैं, तो 13 आयत रहेगी, कल मैं इंशाल्लाह 3 आयत को पेश करूंगा, फिर 10 रह जाएंगी इंशाल्लाह ताला, फिर दो दो आयत को करने के बाद इंशाल्लाह किसी तरह से मुकम्मल कर दूंगा सूरह यासीन को, माह रमजान के इख्तिताम तक इंशाल्लाह सूरह यासीन को मुकम्मल कर देंगे। तो अब यहां पे वयहक्कल कौलु अलल काफिरीन, और काफिरों पर बात पूरी हो जाए, काफिरों पे हक जाहिर हो जाए, तो यहक्कल कौल, अब अल्लाह ने जगह जगह कुरान में हक को साबित किया। आप शेर पढ़ें तो आप जो हैं वो इंसान किसी और कैफियत में चला जाता है, कुरान करीम पढ़ें तो इंसान किसी और कैफियत में आ जाता है, ये कुरान इंसान पे इसका असर ही कुछ और है। लेकिन अगर इंसान में थोड़ी सी भी हयात पाई जाती हो, यानी उसमें जिंदगी हो थोड़ी सी, तो उसके अंदर उसके असर होगा। तो कुरान करीम के अंदर सूरह बकरा के अंदर अल्लाह सुबहान तआला इरशाद फरमाता है, अगर आप देखें ना आयात को, तो अजीब गरीब आयात है ना, अल्लाह सुबहान तआला फरमाता है कि यही आयात इंसान पढ़े, युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन। अल्लाह सुबहान तआला फरमा रहा है कि इन अल्लाह ला यस्तहि अन यदरबा मसलन बऊदतन फमा फौकहा, अल्लाह सुबहान तआला इस बात में शर्म महसूस नहीं करता कि वो मच्छर की मिसाल पेश करे। फ़अम्मा अल्लज़ीना आमनू फ़यअलमून अन्नहुल हक़ मिन रब्बिहिम, और वो जो ईमान रखते हैं, फ़अम्मा अल्लज़ीना आमनू फ़यअलमून अन्नहुल हक़ मिन रब्बिहिम फ़यअलमून, वो जो ईमान रखते हैं वो जानते हैं कि ये उनके रब की तरफ से हक आया है। वअम्मा अल्लज़ीना कफ़रू फ़यक़ूलून माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला, और वो जो काफिर हैं वो कहते हैं अल्लाह की इस मिसाल से क्या मुराद है। युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा, और वो इसके जरिए बहुत से लोगों को गुमराह में मुब्तला कर देता है और बहुत से लोगों की रहनुमाई करता है। इसी اللہ جو مثالیں دیتا ہے, وما یضل بہ الا الفاسقین, اللہ کہتا ہے اور گمراہی صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو فاسق ہیں. گمراہ کون ہوتے ہیں قرآن پڑھ کے یا اللہ کی مثالیں سن کے؟ جو فاسق ہیں. کون فاسق ہیں؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ, جو اللہ سے مضبوط عہد کرنے کے بعد اسے توڑ دیتے ہیں. ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون. تو اب یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بڑے پیارا لفظ کہتا ہے کہ جو عہد توڑ دیتے ہیں اور اللہ نے جسے توڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹ دیتے ہیں, اور جسے جوڑنے کا حکم دیا اسے کاٹ دیتے ہیں, اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں, بس یہی لوگ خسارے میں ہیں. تو یعنی جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں یہ فاسق ہیں, جو اللہ سے عہد کرنے کے بعد. تو یعنی قرآن کریم جو ہے وہ گمراہ نہیں کرتا. وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ, اور کافروں پہ بھی اللہ جو ہے وہ اپنے حق کو ظاہر کرتا ہے. یہ کافر بھی اگر قرآن کریم کو پڑھے گا تو اس کو اس سے ہدایت ملے گی. قرآن کریم سب کے لیے ہدایت ہے. تھامس مکیلوی نام ایک بہت بڑے پروفیسر ہیں, غیر مسلم تھے, مسلمان ہوئے, شیعہ ہیں, ان کا نام ہے علی حیدر, پروفیسر علی حیدر تھامس مکیلوی. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی قرآن کریم کا جینوئن ترجمہ بھی پڑھے گا تو اسے جو ہے ہدایت ملے گی, وہ گمراہ نہیں ہوگا. قرآن کریم کا جینوئن ترجمہ بھی کوئی پڑھ لے تو اسے ہدایت ملے گی. اور نہج البلاغہ کوئی پڑھے گا, ترجمہ بھی پڑھے گا جینوئن ترجمہ, تو اسے ہدایت ملے گی. گمراہ صرف اور صرف وہ ہوتے ہیں کہ جن کے دل میں پہلے سے نفاق و فسق و فجور ہو, گمراہی ہو. تھوڑا سا بھی دل کے اندر پاکیزگی اور صفائی کو قبول کرنے کا مادہ ہو تو وہ ہدایت پا جائے گا. میں چند سوالات کے جوابات دوں گا انشاءاللہ آج کے موضوع کے متعلق. 23 ماہ رمضان آج ہے, گزر رہی ہے, بہت سے ملکوں میں گزر گئی, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, اور بہت آسٹریلیا, نیوزی لینڈ میں ختم ہو گئی, اور بہت سے ممالک میں ابھی جو ہے وہ دن ہے. ابھی یہ برطانیہ میں شام ہوئی ہے, 7:15 ہو رہے ہیں. تو سوالات ہم لیتے ہیں. مخدومہ زہرا کا سوال ہے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاؤ آر یو مولانا صاحب؟ الحمد للہ. کین وی گیو صدقہ آف امام زمان علیہ السلام ٹو دا بلیور آف امام, اور آلسو وی کین گیو اٹ ٹو ڈس بلیور آف امام؟ ریمبر مین یور دعاز. پروردگار آپ کو سلامت رکھے. کیا امام زمانہ علیہ السلام کا صدقہ صرف انہی کو دے سکتے ہیں جو امام زمانہ علیہ السلام کی امامت کو مانتے ہیں, یا جو نہیں مانتے انہیں بھی دے سکتے ہیں؟ امام علیہ السلام کا صدقہ بہتر ہے مومن کو دیں, لیکن اگر کسی غیر مومن کو بھی دے دیں تو کوئی حرج نہیں, دے سکتے ہیں. فاطمہ صغرا, سلام آغا جان. وعلیکم السلام. ہوپ یو آر ویل. مائی کوشچن از دیٹ اف وی ہیو نیل پالش آن ہینڈ اینڈ ٹو نیلز, کین وی ایولیوشن کین وی؟ دیکھیں, وضو اگر آپ نے نیل پالش لگا رکھی ہے ہاتھوں یا پیروں کی انگلیوں پہ تو وضو نہیں ہوتا. ہاتھوں کی انگلیوں پہ تو کیونکہ دھونا واجب ہے, بالکل نہیں ہوتا. لیکن اگر پاؤں کی انگلیوں پہ ایک انگلی چھوڑ دیں تو اس کے اوپر سے آپ مسا کر لیں, وہاں سے مسا کر لیں تو مسا ہو گیا, لیکن ہاتھوں پہ اگر نیل پالش ہو تو مسا نہیں ہوتا. رضا زینب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. علامہ صاحب, سوال ہے کہ ایک انسان جس نے گناہ کیا ہو, کیا توبہ کے بعد اگین سے وہ پہلے والا سٹیٹس اللہ پاک کی نظر میں پاک پا سکتا ہے جو اس کا گناہ سے قبل تھا؟ من تابہ یعنی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم, یا امام معصوم علیہ السلام کا فرمان حدیث ہے یہ کہ تائب من ذنب کما لا ذنب له, گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. دوبارہ دیکھیں, نہ گناہ نہ کرنا تو بہتر تھا, لیکن اگر کر دیا ہے تو اس کے بعد اگر توبہ کر لے دوبارہ انسان جو ہے وہ مقام پا سکتا ہے. لیکن گناہ جو بالکل صاف ہے, پاک صاف ہے, اس کا مقام زیادہ ہے. لیکن انسان جو ہے وہ بہت زیادہ عبادات کرے تو پھر دوبارہ اسی مقام پہ آ سکتا ہے. بہت زیادہ توبہ کرے, بہت زیادہ اس پہ شرمندہ ہو, پشیمان ہو, اور بہت زیادہ انشاءاللہ نیکیاں کرے. فضا مہدی کا سلام ہے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. از اٹ نیسسری ٹو پرفارم دا فرائیڈے غسل ان دا مارننگ بفور زوال, اور وی کین پرفارم دا غسل آن دا تھرسڈے نائٹ اسٹے بلیسڈ؟ دیکھیں, غسل جمعہ کا وقت جو ہے وہ بہت سے علماء کہتے ہیں فجر سے لے کے ظہر تک ہے, بہت سے کہتے ہیں طلوع آفتاب تک زوال تک ہے. طلوع آفتاب سے جیسے سورج نکل آتا ہے تب سے لے کے زوال تک, تو یہ وقت ہے اس کا جو ثواب اور اس کی جتنی سیر فضیلت ہے और जिसके लिए बाज़ उलमा कहते हैं उसके बाद फिर वुज़ू नहीं है, बाज़ मराजे कहते हैं, ज़्यादातर कहते हैं नहीं है। तो वो उसके फजीलत का वक्त है वो सुबह के वक्त, जवाल से पहले पहले, लेकिन अगर नहीं कर सके तो जवाल के बाद भी कर सकते हैं, और शब जुम्मा में भी अगर आपको पता है दिन में पानी नहीं मिलेगा तो शब में कर लें, लेकिन अगर पानी मिलेगा तो दिन में करें, नहीं कर सके तो जोहर के बाद कर लें। तो बहरहाल गुस्ले जुम्मा की बेनतहा फजीलत है, उसको जैसे तैसे भी हो करें, बजा लाएं। शानजा फातिमा का सवाल है, सलाम आगा वालेकुम सलाम, क्या मुजतहदीन को मौला आका इमाम आका इमाम आयतुल्ला या फिर आयतुल्ला लुज़्मा का लकब से पुकार सकते हैं? और एक हदीस में है कि ये हम पर हुज्जत हैं और इमाम इन पर, तो क्या इमाम हम पर हुज्जत नहीं? जी देखें, इन्नहुम हुज्जती अलैकुम वअना हुज्जतुल्लाह, इमाम हम इन पर नहीं, इमाम सब पर अल्लाह की हुज्जत है, ये मुज्तहिद अल्लाह की हुज्जत नहीं है, हुज्जतुल्लाह नहीं है, ये इमाम की हुज्जत है हम पे। यानी इमाम अलैहि सलाम कहते हैं कि गैबत में, क्योंकि इमाम गैबत में हैं, तो यानी इमाम अलैहि सलाम इनको हुज्जत करार दे रहे हैं, तो इनका मकाम यानी इमाम के मकाम के बराबर नहीं है, इनकी इख्तियारात विलायत इनके इल्म मारफत यानी ये मासूम नहीं है, ये इमाम जितना मकाम नहीं रखते, इमाम हुज्जतुल्लाह है, इन पे भी हम पे भी सब पे हुज्जत है, हम पे भी हुज्जत है, अल्लाह की हुज्जत है, ये अल्लाह की हुज्जत, ये हुज्जतुल्लाह नहीं है। ज्यादा लग देते हुज्जत सलाम जैसे, हम जैसे उनको भी कहते हैं, लेकिन ये कि बहरहाल ये इनका मकाम कुछ और हमारा कुछ और है, और ये इनका मकाम भी वो नहीं जो इमाम मासूम है, इमाम मासूम, इमाम मासूम है वो हुज्जतुल्लाह है। आया इन्हें ये दूसरे सारे अलकाबात दिए जा सकते हैं? देखें बहुत से अलकाबात पे बहुत से उलमा के इख्तलाफ है, लेकिन बहुत से अलकाबात दिए जा सकते हैं। बहरहाल मैं इसमें नहीं जाऊंगा, क्योंकि कई दोनों तरफ से हाँ ना के अंदर दोनों तरफ से गालियां पड़ेंगी, दोनों तरफ से जो है बातें सुनने की मिलेंगी, किसी चीज़ की नफी कर दें तब भी, किसी चीज़ की हाँ कह दें तब भी। तो बहुत से अलकाब जो है अब तो आम हो गए, बहुत से अलकाब इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन बहुत से अलकाब जो हैं वो नहीं इस्तेमाल होते, और होते हैं, तो दोनों तरफ से जो है मसाइल हैं इसमें। माहरुख नदीम, सलाम वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग अस दिस फोरम, काइंडली इन्फॉर्म दैट इन नॉर्मल सर्कमस्टांसिस इन अ होम एट वट डिस्टेंस अ वाइफ मस्ट स्टे से प्रेयर बिहाइंड हर हस्बैंड। नमाज जमात जो है हस्बैंड या बीवी कैसे पढ़ेंगे? अगर शोहर आगे, मर्द आगे नमाज पढ़ रहा है तो खातून पीछे नमाज पढ़ सकती है, महरम हो ना महरम हो। उसमें बाज़ उलमा ने कहा था कि 1.5 सफ का फासला हो, लेकिन ज्यादातर मौजूदा मराजे कहते हैं ऐन पीछे भी खड़ी हो तब भी कोई हर्ज नहीं है, मर्द आगे खड़ा हो ऐन और उसके पीछे खातून खड़ी हो तो काफी है, फासले की ज्यादा जरूरत नहीं है। बाज़ वो पुराने फुकहा कहते थे कि नहीं, 1.5 सफ का फासला, 6 फुट का फासला दाएं बाएं या पीछे की तरफ खातून का हो, दाएं बाएं अभी भी फासला कहते हैं कि नहीं, 1.5 वो 6 फुट का फासला हो, लेकिन पीछे जो है वो अगर ऐन पीछे भी खड़ी हो तब भी नमाज उसकी, वो अगर जमात से पढ़ रहे हैं तब भी सही है, जमात से नहीं भी पढ़े तब भी सही है, लेकिन 1.5 सफ का जमात के लिए फासला सही नहीं है, खातून भी हो तब भी। पुराने शायद इजाजत देते थे, मौजूदा जो फुकाहा हैं उनके जो हैं अगर आप देखें नमाज जमात के अहकाम में, तो वो खातून की भी ये नहीं है कि 6 फुट के फासले से अलग, 2 1.5 2 मीटर के फासले से, 1 मीटर ज्यादा था फासला, बस इससे ज्यादा नहीं हो सकता, तो उसमें फिर जमात नहीं होती। सैयद फखर अब्बास रिजवी मशहदी, सलाम कबीला, वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह। हैव अ क्वेश्चन दैट व्हाई डज मौला लकब और टाइटल फिट ऑन ओनली इन अहले बैत और 12 इमाम्स लाइक मौला सादिक, मौला रजा इन अहले बैत, मौला कासिम और मौला अकबर, सो व्हाई डज ओनली फिट इट इन अहले बैत? देखिए मौला जो लफ्ज़ है वो इन्नल्लाह मौलाया या इन्नल्लाह वलीयुल लदीन आमनू, या कुरान में लफ्ज़ मौला और वली दोनों अल्लाह के लिए आए हैं, और अल्लाह वली लदीना, मौला और वली एक माना में है विलायत से हैं, जो विलायत रखते हों, और तो ये अल्लाह जो है अल्लाह ने अपने लिए कहा है मौला, रसूल खुदा के लिए और हज़रत अली के लिए, यानी सिर्फ आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम है, बस 12 इमाम। कई मरतबा मौला आका के माना में, मौला यानी आका यानी जैसे गुलाम होता है, जैसे ये जैसे हम लोग उर्दू में कहते हैं गुलाम, तो वो आका है, मौला यानी आका के माना में, और हम गुलाम हैं, तो वो हम कहते हैं कि नहीं मौला अली हमारे मौला और हम उनके गुलाम हैं, या मौला अब्बास, या मौला अली अकबर, या मौला, यानी वो हमारे आका और हम गुलाम हैं, ये इस माना में हम कहते हैं कि मौला अली अकबर या मौला अब्बास, मौला अब्बास यानी बेमाना आका और हम गुलाम, ये इस माना में हम कहते हैं। ये मुझे ये सवाल यही था आपका, ये इन्हीं से मखसूस है, यानी मखसूस क्योंकि अल्लाह सुब्हानहु तआला ने कहा कि अल्लाह वली है, मौला है, रसूल हैं और आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम है, इसलिए हम उनको कहते हैं। बाकी मौलाना यानी मौला, हमारे मौला मौलाना को कहते हैं, यानी वो यानी आका के माना में, आगा जैसे कहते हैं फारसी में आगा, मौलाना को या किसी आलिम दीन को कहते हैं मौलाना, यानी यानी आगा के माना में, ना ये कि मौला उस माना में कि जो हम अल्लाह के लिए या नबी के लिए और इमाम के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस माना में किसी आलिम दीन को नहीं कहते। तो मौलाना जो कहते हैं हम, यानी वो कहते हैं यानी आगा के माना में, मोहतरम के माना में। और आज़ाद जब हम कहते हैं कि अना मौला का आरिफ हूँ बेउला का वखरा के, इमाम ज़माना की ज़ात में कहते हैं कि आप मेरे मौला, मैं आपका मौला, मौला के कई माना हैं, जैसे वो अहले सुन्नत कहते हैं कि मैं यहाँ दोस्त के माना में है ना, मौला जब इमाम को कहते हैं तो यानी मौला यानी आका यानी सरदार यानी मास्टर, और जब हम अपने लिए कहते हैं तो आज़ाद करदा गुलाम को भी मौला कहा जाता है, आज़ाद करदा गुलाम, मैं आपका गुलाम हूँ, आपका आज़ाद कर यानी आपका गुलाम हूँ, तो वहाँ उस माना में भी। तो एक एक लफ्ज़ के कई कई मानी है भाई। तो हम इमाम के लिए जब कहते हैं तो कहते हैं मास्टर यानी मौला यानी वली यानी औला बितसर्रुफ यानी मास्टर यानी अब कितने उसके बयान करूँ, टाइम देखें थोड़ा है, आप लोग सवालात जो हैं वो पूरी फहरिस्त भेज देते हैं। सायरा यावर, अस्सलाम वालेकुम, मौलाना वालेकुम सलाम, इफ आई एम प्रेइंग नमाज एंड समवन पासिस बाय विल इट इफेक्ट माई नमाज, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। नमाज यानी मेरा यानी आई थिंक योर क्वेश्चन इज टू पास इन फ्रंट ऑफ यू, अगर सामने से कोई गुजर जाए तो नमाज के बातिल हो जाती है? नहीं, मकरूह है कि नमाजी के सामने से ना गुजर, मकरूह है, हराम नहीं है, नहीं गुजरना चाहिए, एहतराम बेहतर, बाज़त हरम में है, जगह नहीं होती तो इंसान गुजर जाता है सामने से, नमाज नहीं टूटती। फ़िक़्हे जाफरी में अगर कोई सामने से गुजर जाए तो नमाज नहीं टूटती, लोग सामने से गुजर रहे हैं तो नमाज नहीं टूटती, मकरूह है उसके बिल्कुल सामने से गुजरें कि उसकी तवज्जो हटे, लेकिन नमाज बातिल नहीं होती, नमाज सही है। नायबी सवाल है, सलाम मौलाना, मेरा सवाल था कि क्या औरत पर हज करना वाजिब है? क्यों नहीं, अगर उसके पास इस्तेआत हो तो उस पर भी वाजिब है। अगर एक औरत नौकरी करती है, पैसे लेके आती है, जॉब है उसकी, या उसकी अपनी तजारत है, बिजनेस है, कोई कारोबार है, या उसको मीरास में अच्छे खासे पैसे मिले हैं, उसके बाद इस्तेआत हो जाती है, मुस्तती हो जाती है, मुस्तती अगर हो जाए तो उस पर वाजिब है हज, खातून पर भी वाजिब हो जाता है। सैयद रजा हुसैन सलाम वालेकुम सलाम, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो अली अलैहिस्सलाम होते, इज दिस हदीस एग्जिस्ट इन मकतबे तशय्यो, रेफरेंस अवेलेबल। मेरे बाद अगर कोई नबी होता, ऐसी हदीस ज़ाहिरन नहीं है, मैंने नहीं देखी, और ये शिया सुन्नी दोनों किताबों के हदीस जो है वो मुसनद नहीं है, ये ज़ईफ़ हदीस है कि मेरे बाद अगर, जब एक रसूल खुदा खुद ही फरमा रहे हैं कि मैं खातमुन नबीन, मेरे बाद कोई नबी ना होता, अब मेरे बाद इमाम होंगे, वसी होंगे, वसी कौन है? अव्वल हम अली व आखिर महदी, पहले अली हैं और आखिरी महदी, अली सैदुल औसिया हैं, अली वली हैं, मौला हैं, तो नबी का लफ्ज़ नहीं आया। मेरे बाद कोई नबी होता तो ये होता वो होता, कोई भी ना होता, कोई है ही नहीं है, ज़ाहिरन घड़ी हुई हदीस है ये, बल्कि ज़ाहिरन नहीं बल्कि वाज तौर पर कि ये हज़रत अली का नाम लगा दें, किसी और का नाम लगा दें, ये ऐसी हदीस नहीं है। माज़रत, हम इंशाल्लाह इसको मुकम्मल कर देते हैं, आखिरी चंद एक सवालात हैं। मलिका बतूल सलाम अल्लाह वालेकुम सलाम, माय क्वेश्चन इज दैट कोई ऐसा अमल बताएं कि मेरे दिल में इश्क हुसैन बढ़ जाए। देखें, ज़ियारत मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ज़्यादा पढ़ें, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत पढ़ें, उनके फ़ज़ाइल मजालिस ज़्यादा सुनें, मसाहिब ज़्यादा सुनें, मोहब्बत खुद ब खुद बढ़ेगी, और ज़ियारत पढ़ने से उसका जो है इंसान के मोहब्बत में इजाफा होता है। ज़ियारत जो है, ज़ियारत आशूरा, ज़ियारत वारसा, कोई भी ज़ियारत पढ़ें। सलमान रिजवी साहब ने सवाल किया, सलाम कबीला वालेकुम सलाम, हाउ आर यू, अल्हम्दुलिल्लाह, कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन हुरूफ़ मुक़त्तआत एंड इस्मे आज़म आल्सो द सिग्निफिकेंस, काइंडली रेफर सम बुक्स फॉर फर्दर रिसर्च। हुरूफ़ मुक़त्तआत पे बहुत ज़्यादा जो है कोई किताबें नहीं मिलेंगी आपको, अहदीस के अंदर बाज़ जगहों पर है, मैं इसके मुताबिक एक्सप्लेन कर चुका हूँ, यासीन हुरूफ़ मुक़त्तआत में से है, پہلا درس اگر سن لیں اس کے اندر ہم نے کافی ایکسپلین کیا تھا. مختلف کتابوں میں چھوٹی چھوٹی سی بحثیں آپ کو مل جائیں گی, تفسیر انوار النجف میں ہے, خود اس میں مجمع البیان میں ہے, اطیب البیان میں ہے, مختلف کتابیں احادیث کی کتابیں میں جو تفسیر کی کتابیں ہیں ان کے اندر آپ کو ملیں گی مختصر سی بحثیں حروف مقطعات. تو یہ ہمارے لیے نہیں ہے, یہ رسول خدا اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے. اسی کے اندر اس کے ملتا کہ یہ جو 28 جگہوں پہ قرآن میں حروف مقطعات آئے ہیں ان کے کیا معنی ہیں, تو یہ جو ہیں زیادہ اس کی وضاحت نہیں کی گئی کیونکہ اللہ اور رسول کے درمیان میں خاص کلام ہیں اور وارثان قرآن صرف اس کو جانتے ہیں. وارثان قرآن ہیں آل محمد علیہ السلام, محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن پہ قرآن نازل ہوا وہ اس کے قرآن ان کا معجزہ ہے, اللہ نے ان کو عطا کیا یہ معجزہ ان کے لیے ہے, ان کی رسالت و نبوت کی دلیل ہے اور اہل آل محمد اس کے وارث ہیں. یشا عباس, السلام علیکم. السلام علیکم. مائی کوشچن از دیٹ وین ایور آئی آفر نماز یوز لیس تھاٹس کم ان ٹو مائی مائنڈ اینڈ آئی فیل ٹو فوکس, کین یو سجیسٹ سم تھنگ ٹو اوائڈ دس؟ بعض کا انسان جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو ذہن کے اندر خیالات آتے رہتے ہیں, فضول خیالات, انسان کی توجہ نہیں ہوتی. تو مرحوم سید عبدالحادی شیرازی مرحوم آیت اللہ, بہت بڑے ایک مرجع گزرے ہیں نجف اشرف کے, وہ نابینا ہو گئے تھے, تو وہ فرماتے تھے کہ انسان جو ہے جب بھی نماز پڑھنے لگے تو نماز سے پہلے امام حسین کو سلام کرے, السلام علیکم یا عبداللہ حسین, اور نماز کے اختتام پہ پھر امام حسین کو سلام کرے تو انسان کی نماز میں توجہ بڑھنے لگے گی. ویسے تو بہت کچھ کہہ سکتا ہوں, امام خمینی کے آداب نماز پڑھ لیجیے, آداب نماز ہیں, بہت سی کتابیں ہیں جس سے آپ کا فوکس بڑھے گا ان کو پڑھنے سے. آخری سوال سنبل زہرا نے سوال کیا, السلام علیہ صاحب. وعلیکم السلام. کیا سجدہ میں ناک کا بھی زمین پر لگنا ضروری ہے؟ اگر جی تو سجدہ گاہ پر کیسے سجدہ کیا جائے؟ سفر کے دوران گاڑی میں کیسے واجب نماز کی نماز ادا کی جائے؟ کیا قبلہ رخ ہونا ضروری ہے؟ واجب نماز کے لیے قبلہ بھی شرط ہے, طہارت بھی شرط ہے, استقرار بھی, آرام سے سکون سے پڑھنا, ایک جگہ پہ پڑھنا جس کے اندر انسان سیدھا کھڑا ہو سکتا ہے, جھک کے نہ پڑھے, اور گاڑی وغیرہ کے اندر مصحب نماز پڑھ سکتے ہیں, نافلہ نماز پڑھ سکتے ہیں. واجب نماز چلتے پھرتے گاڑی کے اندر نہیں پڑھ سکتے, اگر قضا ہو رہی ہو تو پڑھ لیں لیکن بعد میں اس کی قضا واجب ہے. اور ناک کا زمین پہ یعنی لگانا مصحب ہے. سات اعضاء ہیں سجدے کے, دونوں گھٹنے, دونوں ہتھیلیاں, دونوں پاؤں, انگوٹھے, اس کے پیشانی, سات. سجدگاہ رکھنا اس کے لیے ناک کے لیے مصحب ہے, واجب نہیں ہے. سجدگاہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنی ناک بھی زمین پہ لگا دی تو یہ اس کے لیے مصحب ہے, واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. پروردگار ہم سب کی عاقبت بخیر فرما, ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما, ماہ رمضان میں ہمارے اعمال قبول فرما, ہماری عبادات قبول فرما, ہمیں خلوص نیت سے دین کی خدمت کی توفیق عنایت فرما, ہمارے امام مولا اور آقا کا ظہور ہمیں دیکھنا نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآل طیبین الطاہرین المعصومین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.